हम बहुत बार ये करते हैं कि अपने जाहिर को संवार लेते हैं लेकिन बातिन जो है ना वो खराब होता है। देखिए बाज़ औक़ात फल होता है ना, हम खरीदते हैं फल मार्केट से लेकर आते हैं घर में रखते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है खालिद भाई, लेकिन जब उसे काटते हैं तो अंदर कीड़ा होता है या फल का जायका दुरुस्त नहीं होता, तो फिर वो फल की खूबसूरती ना हमें मुतासिर कर नहीं पाती, बल्कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं धोखा खा गया हूँ या मुझे धोखा दे दिया गया है। तो हमें बहरहाल एक इंसान एक बंदे होने के नाते हमें अपना जाहिर भी संवारना है, अपना बातिन भी संवारना है। और अगर दीन इस्लाम की खूबसूरती की बात करें, मैं मुफ्ती कासिम साहब का एक रिसाला पढ़ रहा था, तो वो उस आयत करीमा पर बेस है, बुनियाद है कि जिसमें फरमाया गया ना कलीमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, कि कलमाए तय्यबा ईमान जो है ये एक पाकीज़ा दरख्त की मिसल है।
सुभान अल्लाह,
ईमान को पाकीज़ा दरख्त से तशबीह दी है, मिसाल दी है कुरान करीम ने। तो बीज जो होता है खालिद भाई, जैसा बीज होगा ना उसका फल वैसा ही होगा।
वाह,
बीज जिस नोयत का होगा फल भी उसी नोयत का होगा। अगर आप जनाब आली आम की गुठली बोते हैं तो अनार नहीं निकलेगा उसमें से,
सही
दरख्त जो होगा वो अनार का नहीं होगा बल्कि वो आम का ही होगा। अगर गंदुम बोते हैं तो जो नहीं काटेंगे आप, बैगन की बेल लगाने के बाद करेलों की बेल लगाने के बाद उसमें से अंगूर नहीं निकलेंगे। अच्छा, फिर इसमें क्वालिटीज भी होती है ना,
सही,
कि किस क्वालिटी का बीज है, तो जिस क्वालिटी का बीज लगाएंगे फल और नतीजा भी उसी क्वालिटी का बरामद होगा।
सही।
अब यहाँ कुरान करीम ने ईमान को, इस्लाम को, कलमा तय्यबा को, इसको तशबीह दी है पाकीज़ा दरख्त से। तो आप गौर फरमाइए कि हमारे दिलों में गोया के ईमान का बीज लगा हुआ है, हमारे दिलों की ज़मीन में ईमान का बीज लगा हुआ है। तो अब इससे जो दरख्त, इससे जो फसल, इससे जो फ्रूट, इससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो बहुत आला क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ईमान से बढ़कर तो कोई बीज है ही नहीं ना। ये तो सबसे आला क्वालिटी का बीज है, सबसे आला नस्ल का बीज के लिए,
बेहतरीन
समझने के लिए
बेहतरीन बात।
लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास नताइज वो नहीं आ रहे। ये जो कहा गया ना कि कशजरतिन तय्यबतिन, और फिर आगे कहा गया कि इसकी जो शाखें, इसकी जो बुनियाद है यानी इसकी जो जड़ें हैं, असलुहा साबितुन,
वाह वाह,
इसकी जड़ें गड़ी हुई हैं, जमी हुई हैं,
वाह,
और इसकी शाखें आसमानों की बुलंदी को छू रही हैं, अजमत के एतबार से, बुलंदी के एतबार से। ये बयान किया गया कि जब ईमान का बीज दिल की जमीन में लगता है तो फिर इससे जो कैफियात, सिफात और करेक्टरिस्टिक्स बरामद होती हैं वो इतनी आला और अरफा होती हैं गोया कि उनकी बुलंदी जो है वो आसमान को छू रही होती है।
वाह 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 वाह,
यानी एक मुसलमान की कैफियत और सिफात ये होनी चाहिए कि उससे खुशबू की लपटे ही आए, उससे मदीने की किरणें ही बरामद हो,
वाह वाह,
उससे लोगों को देखकर खुशनुमाई, खूबसूरती और खूब रंगी देखने के बाद लोग इत्मीनान का सांस लें,
सही
होना ये चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा।
सही।
अगर मैं और आप गौर करें, हम सब अपना अपना मुहासबा करें, अपनी अपनी सिफात,
डिमांड और आइडियल पोजीशन क्या है, वो ये है जो
आपने, वो ये है, होना ये चाहिए,
सही,
लेकिन हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें ना फौरी तौर पे ख्याल आता है, हाँ यार देखो यार ये कैसे है, तो ये कैसे को छोड़ दें, हम कैसे हैं ये देखें।
वाह
वाह,
तो हम कैसे हैं, हम अगर देखें तो मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छी सिफात हैं और कौन कौन सी बुरी सिफात हैं, दयानतदारी से मेरा ख्याल है हम फैसला कर सकते हैं। इतना तो ज़मीर ज़िंदा होता है कि बंदा ये बोले, यानी आप देखें ये तो है ना हमारे माशरे में, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता है कि हाँ नमाज पढ़नी चाहिए,
पढ़नी पढ़ नहीं
पाता, तो इतना तो कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अच्छाई और बुराई में आप कम से कम अपने आप को धोखा इन मानों में नहीं दे रहे कि जब मुहासबा करने आते हैं तो आपको पता होता है, नहीं भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं सच नहीं बोलता, या मैं रिस्क हलाल कमाने के मामले में गफलत का शिकार होता हूं। तो अब ये खराबी आ क्यों रही है खालिद भाई
जी?
तो बात ये है कि बीज तो अच्छा है, जमीन में कोई प्रॉब्लम है, यानी इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है,
सही,
प्रॉब्लम जो है वो एक्सटर्नल है, बीज में नहीं है,
सही।
तो अब वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है इस पर गौर करना चाहिए, और इस पर जब गौर करेंगे तो सबसे बुनियादी बात जो होगी, एक बहुत फंडामेंटल एलिमेंट जो होगा आपका, वो क्या होगा कि वो आपका दिल कैसा है, जमीन कैसी है जिसमें बीज लगाया हुआ है,
सही।
अच्छा, اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تھوڑی مدنی چینل کے ناظرین غور کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا.
بالکل.
وہ یہ کہ بیچ اچھا لگا ہوا ہے خالد بھائی, زمین پہ نا ایٹموسفیئر کا بھی اثر پڑتا ہے اور خود زمین کا اثر بھی فصل پہ پڑتا ہے.
ایسا ہے
تو ہمیں اپنا ایٹموسفیئر بھی اچھا رکھنا ہے. کسان سب سے زیادہ جو ہے نا موسموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں,
کس موسم میں کیا کاشت کرنا,
کیا کاشت کرنا ہے, اور جیسے ہی بادل وغیرہ ایٹموسفیئر تبدیل ہوتا ہے نا تو یا تو ان کے چہروں پہ بشاشت آتی ہے یا فکر آتی.
ایسا ہی
تو وہ اگر ایٹموسفیئر وہ ہو رہا ہے جو اس کی انہیں توقع ہے تو بشاشت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اور اگر ایٹموسفیئر وہ ہو رہا ہے جو ان کی توقع کے خلاف جا رہا ہے تو وہ تشویش اور فکر میں مبتلا ہوتے ہیں اور دونوں حالتوں میں دستے دعا اٹھا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی غور بھی کرنا چاہیے اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے اور ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس وہ دولت عظیمہ ہے کہ ہم ذرا سی فکر کریں, ذرا سا اسے اجالنے کی کوشش کریں نا تو چمک بہت اچھی آئے گی.
سبحان,
دیکھیں ہمارے پاس کوئلہ نہیں ہے,
ٹھیک,
ہمارے پاس ہیرا ہے.
واہ واہ واہ,
ایسا نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس چیز کو ہم چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ محنت لا حاصل ہوگی, ایسا نہیں ہے.
بلکہ یہاں کوئلے نہیں دھونے,
کوئلے نہیں دھونے, ہیرا دھونا ہے, ہیرا چمکانا ہے آپ نے. دیکھیں گولڈ جو ہوتا ہے نا, گولڈ جب اسے ڈھالتے ہیں زیور کی شکل میں تو وہ کالا ہو جاتا ہے. بالکل اگر گولڈ جو ہے جس وقت یہ آگ سے نکالا جاتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ یہی سمجھیں گے شاید یہ لوہا ہے یا کوئی اور دھات ہے, کم از کم سونے کا گمان نہیں ہوگا, گولڈ کا گمان نہیں ہوگا. لیکن جب اس پہ بف لگتا ہے, جب اس پہ پالش ہوتی ہے تو پھر وہی گولڈ ہوتا ہے, وہ چمک جاتا ہے. تو اتنا سمجھ لیجئے کہ بحیثیت مسلمان, جب کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر خوب سے خوب تر بننے کی بنیادی صلاحیت موجود ہے.
واہ واہ,
تو اس صلاحیت کو نکالنا ہے. کہیں پہ اب یہ صلاحیت نکل کر آئے گی 2 فٹ نیچے اور کہیں پہ نکل کر آئے گی 200 فٹ نیچے. پانی ہے زمین میں, نکالنے والا ہونا چاہیے. تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ